खुदावंद के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल तफसीलन तौर पर बयान करता है कि ईमानदार को रूह की रहनुमाई में चलते हुए किन बातों से परहेज़ करना है और किन बातों को करना है। सो जब हम 11वीं आयत को देखते हैं, जैसे कि हम पहले जांच चुके हैं, इसको तफसील से देख चुके हैं कि और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। और आगे वो कहता है क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। जिन चीज़ों पर मलामत होती हैं वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। और अगली 14वीं आयत में क्या कहता है, इसलिए वो फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। और आगे वो हुक्म देने के बाद कहता है पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। पहले वो हुक्म देता है कि इस बात से परहेज करो, इस बात से दूर रहो और बुरे कामों पर मलामत करो, उनके कामों में शरीक ना हो। और क्या कहता है, पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। सो बाइबल मुकद्दस का जब हम मतालिया करते हैं, ये बातें तालीमी बातें हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हर एक ईमानदार इन तालीमी बातों से वाकिफ हो। यहाँ पर पालूस रसूल तफसीलन तौर पर, जिसे कहते हैं ना तफसील से बयान करता है। जब हम पहले 5वें बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो वजहात बयान करता है कि क्यों तुम्हें तारीकी के बेफल कामों में शरीक नहीं होना, क्यों तुम्हें उनके साथ रफाकत और शराकत या उनके साथ तुम्हारी शनाख्त ना पाई जाए। रफाकत, शराकत या शरीक होना, जब हम किसी बात में, काम में, महफल में शरीक होते हैं तो हमारी क्या पाई जाती है, उनके साथ शनाकत पाई जाती है। सो यहाँ पर पालूस रसूल तफसीलन तौर पर बयान करता है तुम खुदा के फर्जंद हो, इसलिए तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की है, तुम ही एक दूसरे से मोहब्बत करो। और मसीही होते हुए तुमको उन बेफल या नामुनासिब कामों में शरीक नहीं होना। सो आज मैं चाहता हूं कि इस बात पर हम गौर करें। बहुत दफा सवाल किया जाता है कि जी बाइबल मुकद्दस में ये मुख्तसर बयान दिया गया है, उसकी समझ नहीं आती, उसका क्या मतलब है, उसे कैसे हम जांच सकते हैं। आए मेरे साथ देखें, हम चंद एक बयानात पर गौर करेंगे जिस पर हम आज गौर करेंगे बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हुए, कि तफसीलन बयान हमें सिखाते हैं कि तफसील में क्या बयान किया गया है। और मुख्तसर बयान अगर खुदा ने लिखे हैं तो उनमें खुदा का अपना एक मकसद है। मेरे साथ निकालें पुराना अहदनामा, उसका 4 बाब, पदेश की किताब उसका 4 बाब, पुराना अहदनामा, पुराने अहदनामा में से पदेश की किताब उसका 4 बाब। वहाँ पर एक सवाल किया जाता है, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या काहिन की बीवी कहाँ से आई है। ये सवाल किया जाता है कि काहिन की बीवी कहाँ से आई है, वो कहाँ थी, उसे कैसे पता चला, वो कैसे उसे मिला, वगैरह वगैरह के ये सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। लेकिन मेन यही है कि काहिन की बीवी कहाँ से आई। सो इस मुख्तसर बयान में हम देखेंगे कि क्यों बहुत दफ़ा इस सवाल को उठाया जाता है, लेकिन हम इस पर आज अंदाज़ा तौर पर देखेंगे, मुख्तसर बयान पर अंदाज़ाई तौर पर देखेंगे कि हमें इसमें से सीखने के लिए क्या मिलता है। जब हम पहली 14 आयात का जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं जिक्र, तो हमें दिखता है कि पहली आयत में लिखा है और आदम अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके काहिन पैदा हुआ। बहुत मुख्तसर क्या है, बयान है। तफसील से नहीं कहा गया कि वो कहाँ गया, कहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, कौन सा वक्त था, कब वो अपनी बीवी के पास गया। क्या लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया, और वो हामला हुई और उसके काहिन पैदा हुआ। जब भी हम देखते हैं ऐसे बयानात को तो हमें नहीं पता चलता कि कहां पर, कब, कैसे ये सब कुछ हुआ। लेकिन खुदा का बंदा मूसा रूह की रहनुमाई में क्या लिखता है, इसे मुख्तसर तौर पर लिखता है, आगे देखें। तब उसने कहा, मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर काहिन का भाई हाबल पैदा हुआ, और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और किसान, और काहिन किसान था। अब इस मुख्तसर बयान में भी क्या देखते हैं, अभी वो पैदा हुआ और अगले ही लम्हा में वो भेड़ बकरियों का चरवाहा हो गया। तो क्या है यहां पर, मुख्तसर बयान, जिसे कह सकते हैं कि तफसील खुदा ने देना पसंद नहीं की कि इसके पीछे तफसील क्या है, पूरी डिटेल क्या है। जैसे जब कोई ड्रामा लिखा जाता है उसमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा अभी बाजार में था और अगले सीन में मुझे कहां दिखा दिया जाता है, वो घर में है। सो बाजार से लेकर घर तक का जो फासला है उसमें कुछ भी बयान नहीं किया गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने कहां कहां पर रुक कर किससे बात की। सो यहां पर हमें मिलता है मुख्तसर बयान। आगे हम हाबल और हाबल अपनी भेड़ बकरियों के पलोठों भेड़ बकरियों के कुछ पलोठों को पलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावन ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया। फिर मुख्तसर बयान, पैदा हुआ, चरवाहा हो गया, और उसके बाद उसने क्या किया, खुदा के हजूर हदिया पेश किया और खुदा ने उसे कबूल किया। आज इस बात पर गौर करवाने का मकसद क्या है कि बहुत दफा बाइबल मुकद्दस में सिर्फ छोटा सा हमें क्या मिलता है, बयान मिलता है, जिसमें बहुत दफा ईमानदार गहराई में जाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है इसके पीछे ये हुआ हो, हो सकता है इसके पीछे ये हुआ हो, हो सकता है ये अंदाजे की बात है, ये अंदेशे की बात है। लेकिन मैंने ये बात सीखी है अपने उस्तादों से कि जहां पर बाइबल मुकद्दस खामोश है वहां पर हम भी खामोश रहें। मिसाल के तौर पर जब हम पांचवा बाब देखते हैं, वहां पर आपको पता है ना हनूक के बारे में कि हनूक खुदा के साथ क्या चलता रहा, 300 साल तक। पता किसी को वो बयान, हनूक खुदा के साथ 300 साल तक चलता रहा। जब हम पदेश पांच बाब उसकी 22-23 आयत को देखते हैं, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। क्या हुआ, 365 बरस की उसकी उम्र हुई और वो 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। 22वीं आयत को देखते हैं, और मत्तूसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। क्या है, मुख्तसर बयान, हमें नहीं पता उसने 300 साल में क्या क्या किया, हमें नहीं पता वो सारे 300 साल तक, सारे जितने उसने 300 साल गुजारे उसमें वो कहां पर रहा, उसने क्या किया, लेकिन क्या है, मुख्तसर बयान है। तो इसलिए बहुत दफा सवाल किया जाता है, काहिन को जब हुक्म दिया गया कि खुदा ने कहा कि तूने अपने भाई को कत्ल किया है, तेरी सजा क्या है, तू जमीन पर खाना खराब होगा, यहां पर हमें तफसील मिलती है। मिसाल के तौर पर जब खुदावन खुदा ने पूछा काहिन से, 9वीं आयत को देखें, तब खुदावन ने काहिन से कहा, तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? खुदावन ने सवाल किया और उसने खुदावन से सवाल किया, और आगे क्या लिखा है, फिर उसने कहा कि तू ने ये क्या किया। खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है, लेकिन वो चाहता है कि हमसे गुफ्तगू करे। खुदावन ने क्या, तूने ये क्या किया, तेरे भाई का खून जमीन पर, जमीन से मुझको पुकारता है, जमीन से मुझको पुकारता है, जो कि खुदा की उस अलाही कुदरत की तरफ इशारा है कि वो हर एक चीज़ जानता है। ज़मीन पर चिड़ी भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरती। और आगे क्या लिखा है, और अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह पसारा पसारा के तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। यहाँ पर तफसील शुरू हो गई, हो गई ना तफसील शुरू, कि तूने अपने भाई के साथ क्या किया, उसका खून मुझे पुकारता है, ज़मीन तेरे तरफ से लानती हुई, ज़मीन ने अपना मुंह पसारा यानी कि अपनी पैदावार देने पर खुश नहीं हुई, तुझ पर लानत हुई। और आगे क्या लिखा है, तेरे हाथ से तेरे भाई का खून लिया, जब तू ज़मीन को जोतेगा तो अब तुझे अपनी पैदावार, अब वो तुझे अपनी पैदावार ना देगी। आगे क्या लिखा है, और ज़मीन पर तू खाना खराब होगा, खाना खराब और आवारा होगा, तब काहिन ने खुदावन से कहा मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पर तफसील चल रही है, तफसील चल रही है, देख तू आज, देख तू, देख तूने मुझे रूहे ज़मीन से निकाल दिया और मैं तेरे हजूर रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल करेगा। यहाँ पर हम उस सवाल के तरफ इशारा करते हैं जो कहा जाता है कि काहिन की बीवी कहाँ से आई। अभी तक हमें जो मुख्तसर बयान में क्या मिला है, आदम अपनी बीवी के पास गया, उसके दो बेटे हुए, लेकिन यहाँ पर काहिन क्या कहता है, हाबल को उसने कत्ल कर दिया, अब आदम और हवा हमें पसे नजर मजे पर नजर आ रहे हैं। लेकिन काहिन क्या कहता है कि अगर कोई मुझे पाएगा तो वो मुझे मार डालेगा, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कोई और भी आदम के बेटे और बेटियाँ थे जिनका खुदा ने जिक्र नहीं किया। क्या लिखा है, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल करेगा। जो कोई, क्या आदम उसे कत्ल करेगा, क्या हवा उसे कत्ल करेगी? सो इससे हम क्या लगाते हैं, अंदाज़ा या नतीजे पर आते हैं कि आदम के और भी बेटे बेटियां थे जिनका बयान नहीं किया गया, जो कि हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो मुख्तसर बयान में सिर्फ हमें मुख्तसर मालूमात मिलती है, तफसील के साथ जब बयान दिया जाता है तो उसे हमें पूरी मालूमात मिलती है, और ऐसी बातों की समझ आती है जैसे सवाल किया जाता है कि काहिन की बीवी कहाँ से आई। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कहा कि अगर कोई और मुझे पाएगा तो वो मुझे कत्ल कर डालेगा। कह सकते हैं अंदाजन तौर पर कि आदम और हवा से और भी बेटे बेटियाँ पैदा हुए जिनका बाइबल मुकदस में जिक्र नहीं किया गया। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं जी? मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने लिए सोचें, ताकि इस आयत को जब कोई सवाल करे कि क्या आदम के बेटे काहिन की बीवी कहां से आई। आगे देखें 15वीं आयत, तब खुदावन ने उससे कहा नहीं, बल्कि जो काहिन को कत्ल करे। फिर खुदावन भी कह रहा है कि जो काहिन को कत्ल करे उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा, उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। सो यहाँ पर हमें और बात मुत्तफिक नज़र आती है कि वाकई ही वहाँ पर और भी लोग रहते थे, और भी औलाद थी, जिसे हम देखते हैं कि नूह आदम की ज़िंदगी में यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया। आगे क्या लिखा है, और खुदावन ने काहिन से कहा, और खुदावन ने काहिन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। फिर खुदावन ने क्या किया, उसके लिए एक निशान ठहराया। हमें नहीं पता वो निशान क्या था, लेकिन वो निशान था, उस पर ये निशान ठहराया गया कि जो कोई उसे पाए अगर उसे कोई कत्ल करे तो उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। सो सवाल का जवाब हमें कुछ नजर आता है यहां पर जब देखते हैं 16वीं आयत। सो काहिन खुदावंद के हजूर से निकल गया, उसकी हजूरी से चला गया, उससे दूर हो गया, उसके कॉल के मुताबिक वो जमीन पर खाना खराब होगा। और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। सो ये इलाका कहां से आ गया? की तरफ जा बसा, नूद के इलाका में जा बसा। और काहिन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। यहां पर तफसील थोड़ी सी नजर आ रही है। सवाल किया जाता है कि कहां से आ गई, लेकिन यहां पर क्या किया गया, उसने शहर बसाया, एक शहर तमीर किया है जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर और भी लोग थे। लेकिन ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद, बहुत दफा बाइबल मुकद्दस में मुख्तसर बयान है, हनूक 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा और उसके बाद उठा लिया गया। आदम अपनी बीवी के पास गया, वो हामला हुई। काहिन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई। सो बहुत दफा मुख्तसर जवाब है कि उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। और बहुत दफा तफसीलन तौर पर जब हम देखते हैं नूह को क्या कहा था खुदा ने, तफसील देखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, आप पदेश 6 बाप उसकी 13 आयत को जरा देखें, हम चंद लम्हों में इस पर गौर करेंगे। यहां पर तफसीलन बात की गई है। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफिर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बनाना। तफसील में क्या है? गोफिर की लकड़ी लेना, उससे कश्ती बनाना। और तफसील क्या की दी गई, पेश की गई है, उस कश्ती में खिड़कियां कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। तफसील शुरू हो गई जी। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना। और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, ऊंचा, दूसरा, तीसरा। ये क्या है? तफसील है। ये नहीं कहा गया कि नू मैं तेरा खुदावन खुदा कहता हूं कश्ती बना। अगर नू को पता ही नहीं कश्ती क्या है तो वो किस तरह बनाएगा। सो खुदा ने उसे तफसील दी है कि कश्ती बना, जिससे हम पीछे जब जाते हैं इसके पसे मंजर में कि जब वो जमीन पर रहते थे उन्होंने घर भी बनाए होंगे, जब वो जमीन पर रहते थे उन्होंने दूसरी और चीजों को भी बनाया होगा। सो जब उसने कश्ती बनाना शुरू की, जो तफसील खुदा ने उसे दी थी, जो नक्शा खुदा ने उसे दिया, उसने उसके मुताबिक बनाया, तो हमें क्या पता चलता है कि पूरी तफसील दी गई है। यहां पर कोई ये नहीं कह सकता तफसील करने वाला कि कश्ती क्या दी है, उड़ने वाली कश्ती बनाई है नहीं, या पहियों वाली कश्ती बनाई है नहीं, या बगैर चप्पूओं वाली कश्ती बनाई है। यहां पर क्या लिखा है? सारी कश्ती को जैसे मैं कहता हूं बंद कर देना, उसमें एक दरवाजा रखना। ये नहीं कहा गया कि वो चप्पूओं से चलाई जाएगी। सो जब हम इस कश्ती को देखते हैं तो तफसील क्या बयान करती है? कश्ती बनाई गई है, उसे ऊपर से हाथ भर छोड़ देना, जिससे क्या है, हो सकता है कि हवा अंदर आए जाए, और एक दरवाजा रखना, सिर्फ एक दरवाजा जाने का, और बाहर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं रखा गया। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने जब उन सबको अंदर कश्ती के भेज दिया तो अपने हाथों से दरवाजे को बंद कर दिया। सो बाइबल मुकद्दस का जब भी हम मतालिया करते हैं, कोई भी सवाल किया जाता है, जैसे बहुत दफ़ा कह सकते हैं कि कहा जाता है कि आदम की, क्या आदम की तो नहीं थी, तो उसका कोई भी हमें जिक्र नहीं मिलता। ये सारी सच्चाइयाँ या गौर व फिक्र हम क्यों कर रहे हैं? ये ईमानदारों को इससे वाकिफ होने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एक पासबान को, ना कि सिर्फ एक सेमनरी के स्टूडेंट को, बल्कि हर एक ईमानदार को इन बुनियादी सच्चाइयों को जानने की ज़रूरत है, ताकि हम पढ़ सकें कि बाइबल हमें क्या कहती है। सो मुख्तसर बयान और फिर तफसीलन बयान। इसलिए पालूस रसूल वहाँ पर कहता है, और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। वहाँ पर वो एक जुमले में सारी तफसील बयान कर देता है, उससे वह हम नतीजा निकालते हैं, और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। तो फिर हम तरीकी को बयान करना या देखना शुरू करते हैं। तरीकी को गुनाह कहा गया है, तरीकी को खुदा से जुदाई कहा गया है, तरीकी को खुदा से दूरी का नाम दिया गया है। तो फिर उन तमाम कामों पर हम गौर करते हैं कि ये तरीकी की बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करना। झूठ है, तरीकी की बात है, फरेब है, तरीकी की बात है, हसद है, तरीके की बात है, या दूसरे जितने भी जिस्मानी काम जो खुदा को पसंद नहीं, वो क्या गिने जाते हैं? तरीकी के काम गिने जाते हैं। और उन पर क्या करनी चाहिए? मलामत करनी चाहिए। सो आज की ये बाइबल क्लास, सुबह का पैगाम हम सब के लिए, मुझे